अरुणिमा जैसी थी उसी हालत में अस्पताल के लिए निकल जाती है। उसने अपनी चप्पल तक नहीं ली थी, वो नंगे पैर ही अस्पताल के लिए निकल गई थी। अरुणिमा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक तो वैसे ही वो आकाश को लेकर इतना परेशान हो रही थी, ऊपर से आकाश को इतनी चोट लग गई है, ये सुनकर अरुणिमा और ज्यादा घबरा गई थी। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमें जहां सबसे ज्यादा जल्दी पहुंचना होता है तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की रुकावटें हमारे सामने ही आ गई हैं। कुछ इसी तरीके का हाल इस समय अरुणिमा का भी हो रहा था। उसे अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचना था, पर आज सारी दुनिया की ट्रैफिक उसे ही सड़कों पर मिल रही थी। अरुणिमा जिस ऑटो में बैठी हुई थी वो ट्रैफिक में फंस गया था, और सामने इतनी लंबी ट्रैफिक को देखकर अरुणिमा की हालत और खराब हो रही थी। वहां आकाश अस्पताल में है, उसे इस वक्त अपनी माँ की जरूरत होगी, यही सोच सोचकर अरुणिमा की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अरुणिमा ऑटो से उतरती है और पैदल ही अस्पताल के लिए निकल जाती है। इतनी सारी गाड़ी ट्रैफिक को पार करते हुए अरुणिमा सड़क पर चले जा रही थी। नंगे पैर और कड़ी धूप में वो बस अपने बच्चों से मिलने के लिए तेज तेज चले जा रही थी। तभी रास्ते में अरुणिमा का फोन बजता है। अरुणिमा ने ये भी नहीं देखा कि किसकी कॉल आ रही है। उसने तुरंत फोन उठाते हुए अपने कान से लगाकर कहा, आप जो भी हैं बाद में बात कीजिएगा। लेकिन तभी सामने से आस्तिक की आवाज आती है। अरुणिमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? आस्तिक की आवाज सुनकर अरुणिमा के कदम रुक जाते हैं और वो रोते हुए आस्तिक से कहने लगती है, आस्तिक तुम कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ। आस्तिक इस समय अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। कल संडे था इसलिए आस्तिक बच्चों से मिलने के लिए आने वाला था, पर आने से पहले उसने अरुणिमा को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा था। लेकिन अरुणिमा की इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर आस्तिक तुरंत अपने केबिन से निकलता है और गाड़ी की चाबी लेते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है। अरुणिमा फोन पर रो रही थी और उसे रोता हुआ देखकर आस्तिक घबरा गया था। वो जल्दी से ऑफिस से निकलते हुए कहता है, क्या हुआ अरुणिमा, बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो, मुझे कुछ बताओगी भी? और तुम फिक्र मत करो, मैं निकल चुका हूँ, जल्दी तुम्हारे पास पहुँचूंगा, पर बात क्या है? अरुणिमा ने रोते हुए आस्तिक को बता दिया कि आकाश अस्पताल में है और उसे बहुत चोट आई है। आकाश के बारे में सुनकर आस्तिक घबरा गया था। आस्तिक जल्दी से गाड़ी में बैठकर जयपुर के लिए निकल जाता है। अरुणिमा जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स पहले से ही मौजूद थे। अनंत एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और रो रोकर उसकी भी हालत खराब हो गई थी। अरुणिमा को देखकर अनंत जल्दी से अरुणिमा के पास जाता है और रोते हुए उससे लिपट जाता है। अरुणिमा ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। वो अनंत को अपने गले से लगाते हुए टीचर्स के पास आती है और उन्हें देखते हुए कहती है, क्या हुआ है मेरे आकाश को, उसे इतनी चोट कैसे लग गई है? कैसा स्कूल है आपका जहाँ पर आप लोग एक बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते हैं? क्या इसी के लिए हम आपको फीस देते हैं? आप लोगों के होते हुए वहाँ मेरे बच्चे को इतनी चोट कैसे लग गई है? प्रिंसिपल सर ने अरुणिमा को समझाते हुए कहा, मैडम हम समझ सकते हैं कि जो हुआ है उसमें मैनेजमेंट की गलती है, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए, इतने सारे बच्चों पर नजर रखना एक साथ पॉसिबल नहीं है। और आकाश के साथ जब ये हादसा हुआ तब लंच ब्रेक हो रहा था, ब्रेक में तो सारे बच्चे गार्डन में खेलते ही हैं, ऐसे में अगर बच्चों की आपस में लड़ाई हो भी रही है तो टीचर्स को इस बारे में कैसे पता होगा? फिर भी हमने उन बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया है और उन्हें स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया है। आकाश को भी हम हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं, लेकिन डॉक्टर आकाश के बारे में हमें कुछ बताने को ही तैयार नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले आकाश के पेरेंट्स आएंगे, डॉक्टर उन्हीं से बात करेंगे। तभी डॉक्टर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर को देखकर अरुणिमा उनके पास जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब मैं आकाश की माँ हूँ, क्या हुआ मेरे बच्चे को? डॉक्टर हैरानी से अरुणिमा को देखते हैं, फिर कहते हैं, आप अकेली ही हैं, आकाश के फादर साथ नहीं आए हैं, मुझे आप दोनों से एक साथ बात करनी है। अरुणिमा डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है, पर उसने डॉक्टर से कहा, आकाश के फादर निकल चुके हैं लेकिन यहाँ आने में उन्हें समय लगेगा, आप मुझे बताइए ना, मैं आकाश की माँ हूँ, उसके बारे में जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। डॉक्टर कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, देखिए आकाश के सर पर चोट लगी थी और उसके हाथ पैरों में भी चोट लगी थी, लेकिन हमने उसकी पट्टी कर दी है, अब वो खतरे से बाहर है और फिलहाल उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पर फिर भी जब आकाश के फादर आ जाएं तो आप और आपके हस्बैंड एक बार मुझसे मिलने जरूर आइएगा, क्योंकि मुझे आकाश के बारे में आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। अरुणिमा हैरानी से डॉक्टर की बात सुन रही थी। ऐसी कौन सी बात है जो डॉक्टर सिर्फ अरुणिमा को नहीं बता सकते हैं? इसके लिए आस्तिक का होना जरूरी है। अरुणिमा जल्दी से नॉर्मल वार्ड की तरफ जाती है जहां पर आकाश के सर पर पट्टी बांधकर उसे बेड पर लेटाया गया था। अरुणिमा आकाश के पास जाती है, वो अनंत को आकाश के पास बैठा देती है और खुद आकाश के सर पर हाथ फेरने लगती है। आकाश के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी, शायद वो इस वक्त दवाइयों के असर से नींद में था। आस्तिक को सिंगल से जयपुर पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा था, लेकिन अरुणिमा ने इतनी देर में भी आकाश का हाथ नहीं छोड़ा था, वो उसके सिरहाने पर ही बैठी थी। आकाश को अभी तक होश भी नहीं आया था। अरुणिमा और ज्यादा परेशान हो गई थी। आस्तिक जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है वो सीधे आकाश के वार्ड में दाखिल हो जाता है।
आकाश को इस तरीके से देखकर आस्तिक का मन घबरा गया था। वो जल्दी से अरुणिमा के पास आता है। अरुणिमा आस्तिक को देखकर और रोने लगती है। आस्तिक जल्दी से अरुणिमा को अपने सीने से लगा लेता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। अरुणिमा रोते हुए आस्तिक को देखकर कहती है, डॉक्टर कह रहे हैं उन्हें हमसे कुछ बात करनी है आकाश के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मेरे बच्चे के बारे में क्या बात करना चाहते हैं। अगर मेरा बच्चा ठीक है तो उन्हें ऐसी कौन सी बात करनी है जो वो मुझे नहीं बता सकते हैं।